इसके बाद अंबिया कराम की कुछ बातें। हजरत हूद की कौम आद है, यानी ये जिस बस्ती में थी वो अहकाफ की बस्ती थी। वस को रखा आद इन ईजान जरा कौम हो भी लाहकाब, जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि इसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था और ऐसे खबरदार करने वाले इससे पहले भी गुजर चुके हैं और इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े खौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तो इसलिए आया कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बदगुमान कर दे? अच्छा तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। इसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत पर रत रहे हो। फिर जब उन्होंने इस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब करेगा, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार इनका हाल ये हुआ कि इनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। इमेजिन करें, कल तक जहां इतनी बड़ी कौम थी आज वहां कुछ भी नहीं दिख रहा। अल्लाह बड़ी बड़ी ताकतों को इसी तरह मिटा देता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, कभी सोचा तुमने ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। इनको हमने वहां वो कुछ दिया जो तुमको नहीं दिया। इनको हमने कान आंखें और दिल सब कुछ दे रखा, मगर ना वो कान इनके किसी काम आए, ना आंखें और ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और इसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। क्या पता चला कि जब दिल कान आंखों से कोई बंदा काम नहीं लेता तो अल्लाह की पकड़ जब आ जाए तो ये चीजें इंसान के काम में नहीं आती। अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचाए। आपको पता है क्या, जितने सारे गुनाहों के बावजूद मुसलमान क्यों बचे हुए अल्लाह की पकड़ से? क्योंकि नबी नहीं है। नबी मौजूद हो और लोग नखरे करें और जो आज कर रहे हैं वो करें, कब का किस्सा पाक हो चुका था। अल्लाह ने ये 300-400 साल तक सब्र नहीं करना था, खत्म कर देना था उम्मत मुस्लिमा को। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नबी सल्लम आज मौजूद नहीं है, और कुछ लोगों के गुमान के मुताबिक अगर नबी सल्लम मौजूद हैं और लोग फिर भी ये मस्तियां कर रहे हैं तो ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ बात है, क्योंकि अल्लाह ताला बस्तियों को मोहलत नहीं देता। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है इस दौर में पैदा होने का। अगर अल्लाह के नबी के दौर के लोग इस तरह के काम करते जैसे अमूमन आज उम्मत मुस्लिमा करती दिखती है, तो याद रखिए कि हालात बिल्कुल फर्क होते हैं। अल्लाह ताला ज्यादा डिले नहीं करता लोगों को, और अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। फरमाए, तुम्हारे गिर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेज कर बार बार तरह तरह से इनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ने इन हस्तियों ने इनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था? बल्कि वो तो इनसे खोए गए, और ये था इनके झूठ और इन बनावटी अकीदों का इंजाम जो उन्होंने खड़ रखे थे। और वो वाकया भी काबिले जिक्र है। यहाँ से नबी सल्लम का एक वाकया समझ लीजिए। नबी सल्लम ने मक्का में दावत दी, अपनी आखिरी कोशिश कर दी, और अल्लाह हमें भी अपनी आखिरी कोशिशें करने की तौफीक दे। बात बन के नहीं गई, ऐसे लग रहा था कि ये दावत बन पाएगी नहीं, ये किसी वक्त भी बेल मुरझा जाएगी। और किसी भी दाई दीन के लिए ये बात मौत होती है कि उसके लगाए हुए पौधे मिटने लगे, खराब होने लगे। अल्लाह के नबी ने ये सोच कर के, चलिए मक्का वाले तो करीब रहते हैं, शायद इसलिए कदर नहीं करते, यूज्ड टू हो गए, ताइफ चलते हैं। एक तो दरा दूर का सफर है, और दूसरी बात है कि वहां के लोग कुछ पढ़े लिखे और मालदार थे और लीडर टाइप थे। आप हजरत जैद को साथ लेकर गए, मक्का से ताइफ पैदल सफर तय किया। आज कहते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, और अगर सवारी भी होगी तो कितना कुछ पे सवार हुए होंगे। चल चल के पाँव में खून निकल आया, जूतियां चिपकने लगी। मैंने अपने भी क्या किए, क्यों रहम आता है हमें अपने ऊपर? बस इतना ना करें, इतना ना लें। जो ये सोचता ना, उसने आज के दौर की जरूरत को नहीं समझा। खैर, अल्लाह के नबी मिशन के साथ चलते थे, चल पड़े। आगे से देखिए, इस्तकबाल भी अच्छा नहीं हुआ। बहुत थकन दूर हो जाती है जब आगे से बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिले, बहुत सारे लोग आपसे फायदा उठा दें। इतना खूबसूरत माहौल हो कि बस आपके दिल से ही बातें निकलती जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े लोग थे ना, बड़ाई का एहसास था। वहां से अल्लाह के नबी दुखी दिल से वापस पलटे, वहां बैठकर एक जगह दुआ भी मांगी, और वो दुआ इंशाल्लाह आपको भेजेंगे। कभी जिंदगी में बेबस महसूस करें ना, वो दुआएं पढ़ें। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फकुवती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, कि अल्लाह मैं अपनी कमजोरी और अपनी आजजी का शिकवा सिर्फ तुझसे करता हूँ। इला मन तकिलनी, अल्लाह तो मुझे किसके हवाले कर रहा है, दुश्मन के या गैर के, दीवाने के, अजनबी के, जो मेरा हाल अच्छा नहीं करेगा। ऐसे वो अल्फाज थे जैसे कहें कि एक एक लफ्ज में से खून टपक रहा था। अल्लाह सुबहाना ताला ने कैसे मदद की। जब आप ताइफ से वापस पलटे मक्का, तो आप एक जगह बैठे इबादत कर रहे थे, वहां ये वाक्य पेश आया कि अल्लाह ने जिन्नों को भेज दिया। जब आपसे इंसानों ने फायदा ना उठाया, अल्लाह ने जिन्नों को आपसे फायदा दे दिया, और वो जिन यहां से बात सुनकर गए। और आगे जाके आप से बारे में सूरत जिन में पढ़ेंगे, यही जिन जो यहाँ सुन के गए वहां अपनी बस्ती में जाकर फिर तबलीग करते हुए दिखते हैं। आइए देखते हैं। वही सरफ नाली का नफरों मिनल जिन कुरआन, और वो वाक्य भी काबिले जिक्र है, जब हम जिन्नों के गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि वो कुरआन को सुने। क्या पता चला, एक इंसान को ही नहीं अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, जिन्नों की तरफ भी यही कुरान नाजिल हुआ। जब वो इस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ। कुरान पढ़ने का सबसे खूबसूरत अदब खामोशी। आप कहते हैं सुनने वाले तो खामोश हैं, कई दफा अंदर खामोशी नहीं होती। हे जान है, सोचे ही तरह, कभी बच्चों का शोर है। मैं सोचती हूँ कि कुरान को ड्यू रिस्पेक्ट दिए बगैर उम्मते मुस्लिमा कुरान नहीं सीख सकती। लेकिन इज्तमाही तौर पे हमारा मिजाज कितना बिगड़ गया। इमाम साहब किरत करते हैं, पारा पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ते होंगे जब बाहर से इतना बच्चों का शोर जाता होगा। वल्लाही मैं इस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। इंसान हमेशा अपने आप को चेक करे, मैं माहौल में किस चीज का इजाफा कर रही हूँ। और जब तक खामोशी के साथ डिसिप्लिन ना हो, पुरसकून तरीके से बात ना की जाए, बात इफेक्टिव भी नहीं होती, दिल में उतरती नहीं है। और जब किसी कौम पर जवाल आता है ना, तो अल्लाह की किताबों के साथ कभी तालियां लगाते हैं, कभी सीटियां बजाते हैं, कभी कवालियों की सूरत में उसको बोल बोल के पढ़ते हैं, और कभी कुछ और, खाते पीते हंसते बढ़ते। कुरान पढ़ते हुए हम पे कोई पाबंदी ना लगाओ, हम हर काम साथ ही करेंगे। हाँ, आप जाएं जरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो डोर पे हो सकता है वो आपका बैग भी ले ले। आप जाते हैं किसी भी ऑफिस में जहाँ इमिग्रेशन का कोई मामला हो, बाहर लिखा होता है कि फोन आप अंदर नहीं लेके जा सकते, अटेंड भी नहीं कर सकते। उनके काउंटर पे जाकर आप अपना फोन खोल नहीं सकते। इतना प्रोटोकॉल दुनिया की चीजों का, और दीन वाले, और बेचारे जो कुछ अरेंज कर भी लें, तो सुनने वालों को और वहां आने वालों को अगर उस चीज की नीयत का ही ना एहसास होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या फायदा होगा। तो जिन कह रहे हैं दूसरे जिनों को, देखो वन से तो अपने लिए अमल की बात लिखे। चाहे आप किसी दर्स को सुनने जाए, मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जाए, फर्ज नमाजों पर फर्ज मगरिब इशा में जाए, अंदर घुसने से पहले अपना सेलफोन बंद करें और जुबान को बंद कर लें। बाज़ वक़्त दो लोग भी जाते हैं ना, बैठ के बातें कर रहे हैं, नमाज का इंतजार है, मत बोले। मस्जिद में जाकर इंसान की आवाज बंद हो जानी चाहिए। कोई बात करनी है ना, इशारे से किसी को बुलाएं, बाहर कहीं वॉशरूम्स के पास, कहीं किचन के पास खड़े होकर बात कर लें। मस्जिदों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई तो वल्लाही उम्मत नहीं बचेगी। और जो कुछ आंखों देखी चीजें उसको देखकर तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब लोगों को मस्जिदों में जाके भी रूहानियत ना मिले तो क्या होगा। बिलीव मी, यानी ये वो दर्द है कि मैं बगैर वजह से नहीं ये बात आपसे कह रही। और आपके बच्चे अगर कभी मस्जिदों में जाए, तो डोंट लीव देम अनअटेंडेड। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, वो तो हैं बेचारे मासूम, वो तो शोर करते हैं, उसका अरेंज करें, फिर किया हुआ है तो उनसे ताउन करें। फिर ये ना कहनी मेरा बच्चा गोद में बैठ सकता है, कुछ नहीं करता। लेकिन मैं बात करती हूँ अर्ली टीनेजर्स की। मस्जिदों में जाएं, अच्छी बात है, आप ही साथ जाए, देखिए वो करते क्या। माँ वहाँ के हालात के। ह्यूमर बड़ी जालिम होती है, वो काम जो इंसान बाज दफा माँ बाप के सामने नहीं कर पाता। और माँ बाप को कोई क्या पूछता है आज, माँ बाप भी कोई नहीं पूछते। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमारी उम्मत की इस्लाह कर दे। हिदायत के मरकजों से अगर आपको बेदीनी दिखे तो फिर उस उम्मत के जवाल की क्या और अलामत होगी। इसलिए जिन्होंने क्या कहा खामोश हो जाओ, फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। इसको हाईलाइट कीजिए, ये पहले ही दिन का सबक लिया है और दावा करने निकल गए। हम होते कहते अभी 5 साल लगाओ, दावा ट्रेनिंग कोर्स करो और ये करो वो करो। हम अभी तक इस तरद्दुद में कि इस कुरान की दावत को दूसरों से शेयर करें कि ना करें। अभी तो हमारा अपना ही तज़किया नहीं हुआ, हालांकि अल्लाह ताला बताते कि ये किताब अपने पास रखने वाली नहीं है। जिस बंदे के दिल में ये किताब आ जाती है वो हर मुमकिन तरीके से अपने प्यारों को इससे जोड़ना चाहता है। कल मेरा इतना दिल खुश हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, तो मैसेजेस पीछे हो जाते हैं। ऐसे मैं एक स्टूडेंट है तो उनका मैसेज सुनने लगे। यकीन करें तवालत का डर ना हो तो मैं आपको शेयर करूं आपके साथ। अपने घर में दौरे कुरान में मुझे पता है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी उनको। बच्चों को बुला लेता है बंदा, दोस्तों को भी बुला लेता है, सहेलियां भी आती हैं, मर्द नहीं आते हैं। उन्होंने अपने भाइयों को, बेटों को, शौहर को, बाप को, पूरी फैमिली को इनवाइट करके अपने घर में एक पारा सुनाया। आप कभी उनकी शेयरिंग सुने? और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे घर में स्कूल खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो खून के रिश्ते फिर कितने करीब होते हैं। तो याद रखिए ये दर्द पैदा कीजिए। मेरी बेटी ने अभी तक कुरान क्यों नहीं सुना? मेरी खाला ने अभी तक कुरान क्यों नहीं सुना? मेरी पुप्पो अभी कुरान क्लासेस से क्यों नहीं जुड़ी? ठंडे ठंडे लोगों से तब्दीली नहीं आएगी, लोग मेरे कहने पे नहीं आएंगे। मुझे कौन जानता, मैं उनके क्या लगती हूँ? आपके कहने पे आएंगे। मोहब्बतों को, जज्बात को, और तड़प कर आप अपने प्यारों से कोई बात बनवाना चाहते हैं ना, ये बनवा लें। खुद फोन कर करके उनके बच्चों को डाउनलोड करके दे बेलटॉक। अब तो इतने आसान हो गए, मिक्सलर ने तो और ही आसान कर दिया। सिर्फ एक लिंक क्लिक करें और आप वहां पहुंच जाते हैं। कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं बात, लेकिन हम लिए लिए रहते हैं। हम कहते हैं क्या करें, कुड़ते बहुत हैं हम। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, उनका दीन ठीक नहीं है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो बस हर वक्त दुनिया के पीछे भाग रहे। अमली कोशिश करें, मत बोले बेटा मैं नहीं आपसे बोलूंगी अगर आप कुरान नहीं सुनेंगी। और इंसान उम्र के साथ साथ कीमती होता जाता है, तो इस तरह से अपनों के लिए तड़पें। अभी भी 4-5 पा रहे हैं, बेशुमार लोगों तक व्हाट्सएप क्लासेस के जरिए कुरान गया इस साल। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता है। और मैं तो यही कहूंगी कि रब्बे औज़ेन या नशकुर नेमत अकल्लती, कि अल्लाह तो तौफीक दे तेरी इस नेमत का शुक्र अदा कर सके जो तूने मुझ पे और मेरे माँ बाप पे की। तो अल्लाह ने इस चीज में तड़प पैदा कर दी। कहाँ से अल्लाह के नबी टूटे हुए दिल से आए थे? ताइफ वालों ने नाकदरी की, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, एक दर बंद होता है कितने दर खुलते हैं। और जिन जाके कह रहे हैं कि देखो सुनो गौर करो, और जाके दावत देने लग गए। और ये दावत का जुमला नोट कर लें, ये पूरी सूरत सूरत जिन, पूरी तबलीग लिखी हुई कि कैसे उसने खूबसूरत तरीके से ग्रैब किया। तो बस दफा लोग पहली ही दफा आकर दिल दिमाग जान सब दे के फिर हमेशा के वहीं के हो जाते हैं। कहते हैं अब पता चला कि हमारी तड़पती हुई रूह को चैन मिल गया। ये थी वो चीज जो मिसिंग थी हमारी जिंदगी में। और वो फिर ऐसा सफर शुरू होता है कि वो दूसरों को भी अपने साथ ले आते हैं। आइए हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जो सुने उसको दूसरों से शेयर करने वाला बना दे। अब क्या कहा उन्होंने, जाकर कहा ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई, तस्दीक करने वाली, अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो। 3 सेकंड जरा गौर करें, क्या ये जुमला मैंने अपने खानदान के लिए बोला? या कौमना अजीब उदाई अल्लाह, यकीन करें आंसू हैं इन जुमलों में। ए मेरी कौम के लोगों, ए मेरे खानदान वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, एक दफा अल्लाह के दाई की दावत को कबूल कर लो। ये कब होगा? हम वाकई सोचेंगे, देखिए जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, तो आप कहते हैं एक दफा चख के तो देखो, सुना था, चखे तो से जरा मुंह तो लगा के देखें। और जब हम खुद नहीं चखते या खुद खा रहे मजे से खा रहे, किसी को दावत नहीं देते, तो ये ठंडे दिल और ठंडे हौसलों की बात है। तड़प रहे हैं लोगों, ले लो, देखो ये अल्लाह का दाई तुम्हें बुला रहा है, वामिनो भी, और इस पर ईमान ले आओ, क्या होगा, या फिर लकुम मिन जुनूबिकुम, वो तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने, ना तो वो जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हैं, और किन लोगों को सुझाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए ना वो थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिंदा उठाए, क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे और उस वक्त उनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है, ये कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम ये वाकई हक है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो अजाब का मजा चखो अपने इस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे। करें क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल, बस नबी सबर कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सबर किया, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है, तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे। तो बात तो पहुंचा दी गई, क्या फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, क्या नाफरमान लोगों के सिवा भी कोई हलाक होगा। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है सूरत के आखिर में, क्या नबी आप सब्र कीजिए, यहां लिख लीजिए बलाग पहुंचाओ, कन्वे द मैसेज। अल्लाह ने हुज्जत पूरी कर दी, अब कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरी हिदायत का इंतजाम क्यों नहीं किया। जिसको ये एहसास हो गया ना कि अल्लाह ने मेरी हिदायत के लिए ये किताब भेजी है, वो तो इससे फायदा उठा लेगा, और जिसने अपने आप को इससे दूर कर दिया वो फिर नुकसान उठाएगा। आप देखिए कि हम आदि पौनी नेकियों पर बड़े खुश थे इस कुरान को पढ़ने से पहले, और इस कुरान ने जो तड़प लगा दी कि पता नहीं मेरी कोई नेकी कबूल भी हो रही है कि नहीं। पहले इंसान क्या सोचता है, इट्स फाइन, चलो ना चार नमाजें तो पढ़ रही हो ना, क्या है, चलो फिर क्या, शुक्र नहीं कर रही, गलत काम कर रही, लेकिन मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, इरादा बड़ा अच्छा है। लेकिन जब कुरान सामने आता है ना, तो सांप और रस्सी का फर्क पता चलता है। अंधेरों में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन रोशनी होती है ना तो कई दफा आपको कई टूटी फूटी चीजें नजर आने लगती है। इसलिए जो लोग अंधेरे दिलों में उलझे होते हैं ना, वो कहते हैं डार्क प्लेसेस पे रहो, डिम लाइट कर दो, अंधेरों में रहो, नाचो खुद को और तड़पो और शैतान को खुश करो। इसके बरक्स कुरान का नूर जिंदगी में चमकता है, फिर एहसास होता है अल्लाह इतने बड़े बड़े गुनाह थे, मैंने अपने हाथों में सांप पकड़े हुए थे और मुझे इसका एहसास नहीं था। और इस तरह से फिर एक इंसान अपने आप को दिन ब दिन ठीक करता जाता है। मेरे और आपके अमल की यही बात है, कहते रहिए प्यार से मोहब्बत से, लेकिन दर्द के साथ, तनकीद नहीं, ताना नहीं, टॉन्टिंग स्टाइल नहीं, लोगों को शर्मिंदा नहीं करना, रो पड़े। आप चाहते ना आपका प्यारा कुरान कोई सुने, जाके उसका हाथ पकड़े और रोने, क्या हुआ, खैर है, सब ठीक है, नहीं, बस रो ही जाए। जब खूब आप अपना दिल ठंडा कर लेना, फिर बताएं मेरा दिल करता है आप भी कुरान पढ़ें, मेरा दिल करता है आप भी कुरान सुनें। मोहब्बतों से, जज्बात से लें, आप ईद के दिन उनसे खुश ही ना हो, आप उनसे, आपको मुबारकबादें ना दें उनकी खुशियों की, किस सोच से, मैं ये नहीं करी कतर ताल्लुकी करें, किसी तरह अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दें। और नबी ने 13 साल और 10 साल इन्हीं मोहब्बतों का एहसास दिलाया, जो जिंदगी में उनके मामले आए, हमारे तो ऊपर से गुजरे भी नहीं, लेकिन वो लगे रहे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दें।